अब तो गया संसार फीका पड़ गया और श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों के पास पहुंचते ही साध्य तो भगवान ही थी, श्याम सुंदर की ही तो प्राप्ति थी और वो जान चुके थे कि यही कृष्ण है, यही ही नंदनंदन ही गौर रूप में यहां अवतीर्ण हुए हैं, उनको प्राप्त कर चुके थे। लेकिन महाप्रभु जी का आग्रह ये था कि रूप सनातन तुम जाओ, मेरे पास मत रहो, मेरा अभीष्ट जो है इस जीव जगत को अपनी उज्जवल रस भक्ति का प्रदान करना है, नाम प्रेम का प्रदान करना है, ब्रज रस भक्ति का वितरण करना है, उसके लिए तुम दोनों मेरा भी त्याग करो, मुझसे भी विरह का दुख सहन करो और वृंदावन में जाओ। श्री रूप गोस्वामी पाद ने है चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतरे स्वयं रूपा कदा मह्यम दधाति स्वपदांतकम। चैतन्यभीष्ट को यदि स्थापन किया है तो एकमात्र श्री रूप ने किया है और वो उज्जवल रस भक्ति को उन्होंने स्थापन किया है, जिससे कि भक्ति को रसा रसा प्रतिष्ठाचार्य हुए हैं, भक्ति को उन्होंने ही केवल रस में ही प्रतिष्ठित किया, किसी ने भी भक्ति को रस में गिना नहीं था। श्री रूप ने भक्ति को रसत्व प्रदान किया है, रसत्व भी प्रदान नहीं किया, उस भक्ति का वितरण करते हुए हर एक रूप हृदय को एक ऊसर भूमि में भी आपने उस रस का अंकुरित कर दिया है श्री रूप गोस्वामी पाद ने। और फिर उनकी महिमा को तो क्या कहना, आपने जैसे सुना है, समय का हमें भी संकोच है, हम भी आचार्य पाद के मुख से कुछ सुनना चाहेंगे। आपने जैसे सुना कि श्री कृष्ण चैतन्य, जिस समय आपने पहले पहले श्री रूप के ग्रंथ को देखा और पढ़ा कि क्या लिखा है, तो तुंडे तांडवनी रतिं विकुंते श्लोक देखते ही श्लोक पढ़े प्रभु हाइला प्रेमाविष्ट मूर्छित हो गए, प्रेम में विभोर हो गए कि ऐसी महिमा। हरिदास बैठे थे, उठ के देखा क्या हुआ, उनने भी श्लोक में झांका, जब देखा वो तो खड़े होकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण नाम की महिमा को देखते ही श्री कृष्ण प्रेम विभोर हो गए। ये सिर्फ श्री रूप की लेखनी, रूप की भावना, श्री रूप की ही ये इतनी ऊंची गम्य है। कारण कि यहां वो ब्रज लूला में आप श्री किशोरी जी की रूप मंजरी हैं, प्रधान मंजरी हैं, और फिर यहां नवद्वीप में भी आकर के वो श्रीमन महाप्रभु के श्री रूप रूप में आप प्रिय पार्षद हैं। इनके अनुदान के बिना श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी प्रगट लीला में जो कुछ जीवों का उद्धार करना था, जो कुछ उनने अवदान हम लोगों को दिया, जीव जगत को दिया सो दिया, लेकिन उन करुणामय परम करुणा वारणा पर भगवान श्री चैतन्य देव को ये बड़ा फिक्र था कि कलिहत जीव फिर इस प्रेम भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे। सो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के लिए उस उज्ज्वल रस भक्ति को, भक्ति रत्नों को एक स्वर्णम उसमें पिटारी में रख करके, संपुट में रख करके सुरक्षित किया कि जाकर इन ग्रंथों की रचना करो, उसमें ये ब्रज की उज्ज्वल भक्ति रस आप उसमें सुरक्षित करके वितरण करो। और फिर उस ब्रज क्षेत्र का, ब्रज लीला का, ब्रज के विलुप्त तीर्थों का आप उद्धार करो। श्री रूप गोस्वामी ने क्या नहीं किया, उनको कृपा प्राप्त ही क्या साधन था, साधन यही था कि वो परम सिद्ध वहां जहां रूप मंजरी थे, यहां प्रिय पार्षद थे, उनके लिए ना साध्य था ना साधन था। अवश्य उनने इस परिदृश्यमान देह से साधन का आदर्श हम लोगों के लिए रखा, लेकिन साधन के आदर्श में भी उनने स्पष्ट कहा कि यथा श्री कृष्ण हमारी नग्राह्य प्राप्त इंद्रिय, तुम भक्ति का किस भक्ति का अंग करोगे इस भौतिक शरीर से, इस प्राकृत शरीर से, तो ये प्राकृत दिव्या कृष्ण नाम को ले ही नहीं सकते। ये कान उसको सुन ही नहीं सकते। तो आपने ऐसी कृपा की कि वही मत कृपा के अनुसार जीव को वो महत कृपा उनने संचारित की कि जिसका अनुसरण वो करता है इस प्राकृत देह में, साधन देह अथवा सिद्ध देह की बात छोड़िए, इस प्राकृत देह में भी दो देह है। हम दिन रात व्यवहार में निमग्न हैं, संसार में रहते हैं, तो क्या इस प्राकृत शरीर से नाम का उच्चारण करते हैं? होता है नहीं होता? भगवत कथा का श्रवण होता है नहीं होता है? भगवत दर्शन होते हैं प्राकृत नेत्रों से नहीं होते हैं? कब होते हैं? जब चित्त के वो दो भाग में एक जो दूसरा भाग है विशुद्ध चैतन्य की तादात्मता से स्वरूप जो चिन्मय देह का भाग है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने स्पष्ट किया है कि उस देह से तुम जिस समय नाम लेना चाहते हो तुम्हारे उस देह की ये क्रिया है, चिन्मय देह की है, प्राकृत देह की नहीं। और संसार में जब तुम संसार के व्यवहार में लिप्त होते हो उस समय तुम्हारी ये प्राकृत देह की सब क्रिया है, वो भौतिक देह का काम है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने क्या नहीं लिया है? इतने प्रियतम थे है? थोड़ी सी बात है, श्री सनातन आने वाले हैं नंदगांव में, श्री रूप देख रहे हैं कि बड़े भैया आ रहे हैं, पूज्यपाद हैं, क्या किया जाए। मधुकरी करके तो भोजन करते थे, सोचा कि यदि भैया आ रहे हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं, तो उनके लिए आज कोई मैं खीर का प्रसाद अर्पण करता, ठाकुर जी को खीर भोग लगा देता, पर कोई साधन ही नहीं है। ओहो श्री जी, स्वयं श्री राधा जी चावल, दूध, इलायची, केसर, चीनी सब कुछ दे के वहां उपास्थित होती हैं कि रूप क्या सोच रहे हो, लो ये मेरी मैया ने आपके लिए आज ठाकुर भोग के लिए ये भेजा है। श्री रूप ने देखा कि अच्छा, हृदय में तो ये वांछा उठी ही थी, कामना हुई थी, तो ठीक है। कहने लगे कि ठीक है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है इसके बनाने पकाने का। श्री जी ने कहा देखो रूप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा तुम कुछ ये आंगरे कंडे, थोड़ी सी झाड़ू आड़ू, कुछ लकड़ी चुन लाओ, मैं ही खुद तैयार करके दूंगी। ऐसी अनुपम कृपा। श्री प्रिया जी ने स्वयं खीर पकाई, सुंदर बनाई, भोग लगाया और सनातन के लिए उनने सुरक्षित रखी। देखा कि वो जो ब्रज बालिका आई थी वो कहां गई पता नहीं लगा। सनातन ने प्रसाद पाया, पुलकित हो उठे, रूप ये कैसा स्वाद है, ये कैसा चिन्मय पदार्थ तुमने आज मेरे आगे अर्पण किया है, मुझे निवेदित किया है। तो श्री रूप ने सब कुछ कह दिया। सनातन ने कहा कि रूप ऐसा कभी मत करो, वो उस बालिका नहीं थी, वो स्वयं ब्रजानंदनी किशोरी जी थी, वो तेरे लिए सब कुछ और मेरे लिए, तुम्हारे माध्यम से मेरे लिए सब कुछ ले आई, तुम उनको ऐसा कष्ट मत दिया करो। तो ऐसे महत्कृपा प्राप्त, महत्कृपा प्राप्त नहीं, महत्कृपा के जो आधार है, जिनकी कृपा से ही महत्व होता है पुरुष, जिनकी कृपा को, जिनकी भक्ति को प्राप्त करके जीव महत्व बनते हैं, सिद्ध होते हैं, आज वही स्वयं ही श्री रूप के लिए खीर बना रहे हैं। ऐसी करो तो वास्तव में विस्तार न करते हुए इतना ही कहना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की शरण के बिना तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी न तिक्ति भवे, तावत चापी विशृंखलत्वमैते न लोक वेदस्थिति, तावत शास्त्र विदान कलकलो मिथ्या बहर वर्णसु, श्री चैतन्य पदाम भोज प्रिय जना यावन्न दीर्घ गोचर। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के ये जो प्रिय पार्षद हैं, उनके चरण कमलों के जो चंचरीक हैं, उनका इस मनुष्य को, इस जीव को दर्शन नहीं होगा। हम कहते हैं उनका दर्शन जीव के लिए बड़ा कठिन है, हम तो कहते हैं दीर्घ गोचरा का अर्थ है कि वो हम भी निगाह कर ले, अगर उनकी निगाह में हम आ जाते हैं कि इस जीव पे करुणा हो जाए तो वास्तव में तभी ये सब बातें मिट सकती हैं। न ब्रह्म का झगड़ा, न लोक मर्यादा का झगड़ा, न शास्त्र कलकल का झगड़ा, न वाद विवाद का झगड़ा, एकमात्र ब्रज की उज्ज्वल रस भक्ति की प्राप्ति यही इसी वृंदावन में हो जाती है। एक बात और जबरदस्त है, कृष्ण संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, इस भौम वृंदावन में, इसी भौम वृंदावन में ही अप्रकट प्रकाश भी है और प्रकट प्रकाश भी है। अप्रकट गोलोक कहीं ऊपर नहीं है, वो यहां ही है। जब प्रभु कृपा करते हैं तो वो अप्रकट प्रकाश भक्त को दिखता है। कहां से आ गई श्री राधे जी खीर बनाने, कहां सिद्ध लोगों को यहां प्रियाप्रीतम के दर्शन हो गए हैं। उस दिन की बात है, गोस्वामी श्री नरसिंह वल्लभ जी के पास में बैठा था, उनके यहां एक कलकत्ता का इंजीनियर आया, बहुत इंग्लिश का पढ़ा, अप टू डेट जैसे होते हैं। शंका उठ गई कि भक्ति रसामृत सिंधु, उनने कहा भाई ये सब रूप की कृति है, उनकी रचना है और उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा मेरा मन नहीं मानता। ठीक उसी कारे बाबू के पास जहां वो धुरिया कुंज में श्री नृसिंह वल्लभ जी रहते थे, वो यहां ही रहता था इंजीनियर रात को। हुआ ये कि श्री रूप गोस्वामी इसी देश में, जिसमें आजकल हम उनके भावना में चित्रों में दर्शन करते हैं, बहरवास किए हुए, माला झोड़ी हाथ में लिए हुए और एक कमंडल लिए हुए सामने आए, जगा दिया। उन्होंने कहा आप कौन है? मैं रूप हूं, मैं रूप हूं। तो वो तो अचक अचंभे में पड़ गया कि तुम रूप हो। और वो फिर इंग्लिश में बोले, क्योंकि वो तो इंग्लिश जानता था, और इंग्लिश में उन्होंने कहा कि मैं रूप गोस्वामी हूं। और इस एडिटर, इसका लेखक और इस रचयिता, इस भक्ति रसामृत सिंधु का मैं ही हूं। तो ये कहां से आए? अप्रगट लीला यदि यहां प्रगट धाम में ना हो तो कहां से उत्पन्न हो जाती है, है? कहां से दर्शन होते हैं? हां बक वो आंखों में वो लेंस चाहिए कि जिससे उनकी अप्रकट प्रकाश के भी दर्शन हो जाएं और प्रकट प्रकाश में रहते हुए भी उनके दर्शन हो जाएं। तो वास्तव में आज हम श्री आचार्य पाद की चरणों में बस यही चाहते हैं, है कदा मह्यम ददाती स्वयं रूपा कदम, कदा मह्यम ददाती स्वरांतकम। है जिन्होंने चैतन्य अभीष्ट को इस जीव जगत के लिए दिया है, जिन्होंने हरि नाम दिया, जिन्होंने भक्ति दी, जिन्होंने समस्त भक्ति के अंगों का अवदान इस जीव जगत को दिया और संपट में सुरक्षित रखा, आपके जाने के बाद भी आज हम उन भक्ति रत्नों की कांति से कृतार्थ हो रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा अवदान है। आज उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरण कमलों के साया में हमें स्थान दें, हम पे कृपा करें, जिससे कि हम इस ब्रज रस का किंचित आस्वादन।
उससे आज का यह जीव, आज के ये भक्त श्रीमन महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सके, ऐसा अभी हमारे मध्य श्री श्यामलाल जी ने कहा। समय की अधिकता के कारण वक्ता अधिक हैं, इसलिए समय की सीमा में वक्ताओं के चरणों में निवेदन करते हुए मैं ये कहूँगा कि वह समय का भी ध्यान रखें। अब मैं अपने मध्य इस मंच पर आसीन, जिनके की द्वारा वर्षों से श्रीमन महाप्रभु की लीला का पाठ, महाप्रभु के जो षट गोस्वामी हैं और उनके जो कृपा पात्र हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का पाठ नित्य प्रतिदिन किया जाता है, और आपके द्वारा अनेक विद्यार्थियों को श्रीमद् भागवत एवं चैतन्य चरतामृत एवं गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है, ऐसे विद्वान मनीषी पंडित लक्ष्मी नारायण दास जी हमारे मध्य विराजमान है। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह आज के उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन करें।
किंतु प्रभुर्य प्रियजीव तस्य वंदेर गुरु श्री चरणारविंदम अद्वैत प्रकटीकृत नरहरि पृष्ठ स्वरूप प्रिय श्रीत्यानंद सख सनातन गति श्री रूप हित कीर्तन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसल्लासी जगन्नाथ भूषंगूपंग सपार्षद सदयताम देवस्वती। परमादरणीय परम पूज्य श्री सभापति महोदय, परम आचार्य वर्ज वैष्णव पिरामणि श्री महाराज जी तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के उनकी ध्वजा स्वरूप श्री भट्ट जी महाराज तथा हमारे अशेष गोस्वामी ग्रंथों का प्रकाशन करने वाले श्री हकीम जी महाराज तथा राधावन जी की गोस्वामी वृंद श्री पद्मनाभ जी और जितने जितने महानुभाव यहाँ विराजमान है और सभी वैष्णव माताओं आपके चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ कि इस सभा का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। रूप गोस्वामी जी श्रीमान महाप्रभु जी के सर्वश्रेष्ठ हैं, उनका मनोभीष्ट श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतली कदा शिरुवो मह्यं ददाति सपदांतिकम। तो रूप गोस्वामी जी के ये दो ग्रंथ जो हैं, एक भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरे जो हैं उज्जवल नीलमणि, और दो ग्रंथ हैं ललित माधव एवं विदग्ध माधव। ये चार ग्रंथ जो हैं रूप गोस्वामी जी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। रूप गोस्वामी जी ये प्राकृतिक कवि नहीं थे, उन्होंने रसक कवि हैं। रसराज राधा माधव के जो रस मई लीला है वो लीला का वर्णन में रूप गोस्वामी जी का बराबर कोई नहीं है। रूप गोस्वामी जी रसामृत सिंधु ग्रंथ के प्रथम मंगलाचरण में कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति रुचिरुद्ध तारका पाली कलितो श्यामा ललितो राधा प्रयान विधुर जयति। एक ही श्लोक में सारा रस का वर्णन कर चुके हैं। रसामृत सिंधु के एक मुख्य सूत्र है जो एक श्लोक में ही वो सब भक्ति रस का पूर्ण विचार किया है उन्होंने। अन्याभिलाषिता सुन्नं ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनं। जगत को उन्हें एक ही श्लोक के द्वारा ही भक्ति का किस प्रकार आचरण होनी चाहिए वो सारा वर्णन कर चुके हैं। तो ये श्रीमन महाप्रभु जी का जो मनोभीष्ट वो क्या है, महाप्रभु जी का मंतव्य क्या था, रूप गोस्वामी ने उनको किस प्रकार प्रकाशन किया है, एक छोटे से उनका उदाहरण में दे रहा हूं। श्रीमद चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आप लोग निरंतर अध्ययन करते हैं जानते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी नीलाचल क्षेत्र में श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। जगन्नाथ जी के रथ रोक कर जगन्नाथ जी उनको नृत्य देख रहे थे दर्शन कर रहे थे। वहां श्रीमान महाप्रभु जी राधा भावाविष्ट होकर जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे। वहां श्रीमान महाप्रभु जी एक काव्य प्रकाश का श्लोक उन्होंने वर्णन किया था। काव्य प्रकाश कोई एक नाटक है, प्राकृतिक नाटक है, रस शास्त्र का एक प्राकृतिक नाटक है। जह कुमार हर साइब बरस ताइब चैत्र खपा ते चुनमिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला। ये क्या श्लोक का गर्जना देख लीजिए। आज तक किसी ऐसा कोई आचार्य हम नहीं देखते हैं इसके रूप गोस्वामी जी का जो श्लोक का जो गर्जना है ऐसा वर्णन है, ये प्राकृत नायक नायिका का वर्णन कर रहे थे रूप गोस्वामी जी, श्रीमद महाप्रभु जी। रूप गोस्वामी खड़े खड़े सुनते थे वहां महाप्रभु के सामने, महाप्रभु नृत्य करते थे, नृत्य करते करते ये श्लोक पाठ किया महाप्रभु। रूप गोस्वामी उनका हृदय की बात चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतली, महाप्रभु जी का हृदय की बात रूप गोस्वामी से पता चल गया। उन्होंने एक श्लोक लिख करके ताड़ पत्र में एक श्लोक लिखा था, वो श्लोक लिख करके वो अपने वो जहां झोपड़ी में रहते थे रूप गोस्वामी जी, वहां वहां उसको लगा कर रख करके वो अपना गंगा अपना समुद्र स्नान करने गए। श्रीमान महाप्रभु जी रूप गोस्वामी के वो झोपड़ी पर जाकर के रोजाना दर्शन देते थे। प्रभु दास के घर में जाते थे दर्शन देने के लिए, महाप्रभु जी बैठे हैं, देखा कि ताड़ पत्र हैं, उनको निकाल करके श्लोक पाठ करने लगा। उसमें क्या लिखा है, प्रिय सोयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता तथा हंसाराधा तदिदम भयो संगम सुखम तथा पंत खेलन मधुर मुरली पंचमजुसे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। अब श्लोक का झंकार देख लीजिए, ऐसा श्लोक आपको बहुत ही कम मिलेंगे। क्या कह रहे हैं श्री विश्वानंदिनी, जब कुरुक्षेत्र मिलन हुई थी, ब्रजवासी के लिए निमंत्रण दिया गया, जब द्वारका से श्री भगवान कुरुक्षेत्र स्नान में आए थे तो ब्रज से सब लोग निमंत्रित होकर गए, तो प्रिया जी के प्रति कोई निमंत्रण नहीं थी। सखियों ने बताई कि चलो हम भी चले दर्शन करें आमें, तो वहां अपने महिषियों का बीच में श्री श्याम सुंदर वो स्नान करते थे, तो राधा जी के जो सहचरी वो इशारा करके श्री श्याम सुंदर को बुलाए कि आपको मिलने की अगर इच्छा हो तो आप हमारे संग चलिए, प्रिया जी से आपको मिलन करा देंगे। तो श्याम सुंदर से इशारा से उनसे पीछे जाकर के मिलेंगे ऐसा इशारा दिए, पीछे जाकर के श्याम सुंदर जी राधा जी जहां विराजमान रहती थी वहां जाकर के मिले। तो सखी कह रही है जब मिलन हुआ प्रियस, वो राधा जी के लिए कह रहे हैं, हे प्रिय सखी श्री राधे, आप तो श्याम सुंदर को आपको प्राप्ति हुई है, आपको तो हृदय की कोई दुख नहीं है। तो प्रिया जी की उक्ति है, प्रिय सोयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता, हे प्रिय सहचरी, प्रिय सोयं कृष्ण वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वही है, तथा हंसा राधा मैं वही वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी हूं, तदिदम भयो संगम सुखम हम दोनों में बड़ा सुंदर मिलन हुई है, किंतु सखी मुझे आनंद नहीं आ रही है, क्या कमी कह रही गई है। देखो सखी, जिस कृष्ण के हाथ में बंसी नहीं है, जिनके मयूर मुकुट नहीं है जिनकी मस्तक पर, बरहा पीरम नटबर बपु करणयो करणिकारम वो स्वरूप नहीं है, ऐसे कृष्ण को दर्शन करके मुझे क्या सुख मिल सकते है, तो बोले क्या चाहती हो आप बोलो। तथा पंत खेलन मधुर मुरली पंचमजुसे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति, अगर मुझे आनंद देना हो ये श्याम सुंदर यदि वृंदावन में जाकर जमुना जी के किनार पर जो कुंज है वो कुंज के भीतर जहां की निरंतर जहां मुरली ध्वनि कर रहे हैं श्याम सुंदर, जय राधे करके पुकार रहे हैं, वहां जाकर के श्याम सुंदर से हमसे मिलन हो, जब ही हमारी मिलन की पूर्ति वहां ही हो सकती है। श्रीमान महाप्रभु जी वो श्लोक पढ़ करके वहां बैठे हैं, रूप गोस्वामी जी इसमें आ गए समुद्र स्नान करके, रूप गोस्वामी जी दंडवत किए, महाप्रभु जी पीठ में एक थप्पड़ मार दिए, प्रेम का थप्पड़, बोले रूप तुम्हें हमारे मन की खबर कैसे पता चली। रूप गोस्वामी लज्जित हो गए। रूप गोस्वामी जब जाते समय नीलाचल जाते समय एक सत्यभामापुर नाम की ग्राम है, श्री चैतन्य चरितामृत में आपको सब मिलेंगे, सत्यभामापुर में सत्यभाम जी की आदेश हुई आज्ञा हुई है कि रूप तुम एक नाटक लिखो, द्वारका लीला के ऊपर एक नाटक लिखो। रूप गोस्वामी लिख रहे थे, तो महाप्रभु जी एक दिन वो नीलाचल में जब पहुंचे रूप गोस्वामी वो लिख रहे थे, महाप्रभु जी बोले रूप तुमने कुछ लिखते होंगे। बोले महाराज मुझे हमारे प्रति ऐसा आदेश हुई है सत्यभामा जी की जे द्वारका लीला के संपर्क में एक नाटक लिखने क्या आज्ञा हुई है। तो महाप्रभु जी बोले देखो कृष्ण को ब्रज से बाहर मत करा करो, ब्रज होते कृष्ण ना जाए कहती, ब्रज से कृष्ण कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो एक प्रमाण भी दिया रूप समिति के लिए ब्रह्म जामल का, कृष्णा दन्न जद संभूत जस्तु गोविंद्र नंदन वृंदावन परित्यज्य शाकचि नैव गच्छति। कृष्णादन्न जदुसंभूता, जदुसंभूता जदुकुल में जिनका आविर्भाव हुआ है वो अन्य कृष्ण है। श्री कृष्ण का तीन स्वरूप जिनको स्वामी जी ने बताए, कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरादिषु, ये तीन स्वरूप बताया गया है गौड़ीय संप्रदाय में, ये तीन स्वरूप का वर्णन है। तो उन्होंने ये सभा में, सभा के समय जहां की स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय जी, हरिदास ठाकुर, सारभट्टाचार्य जी लेकर ये सभा होती थी, गोष्ठी होती थी, वो गोष्ठी में रूप गोस्वामी जी के लिए समान वहां पर कह रहे हैं तुम क्या क्या नाटक लिख रहे हो इस सभा में तुम बोलो। रूप गोस्वामी लज्जित हो गई। तो महाप्रभु जी को एक नाम का महत्व का कोई श्लोक बोलो तुम, क्या लिखा है नाम महत्व का। रूप गोस्वामी कहते हैं आज्ञा को पालन करना चाहिए। तुंडे तांडविनी रतिंग बितनुते तुंडा बलिंग लब्धये कर्ण क्रूर कड़म्बिनी घटयते कर्णार्बुदे बस्प्रियाम चेत प्रंगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियादंकृतिम नो जाने जनिता कियद भी रमिर्तई कृष्णेति वर्णद्दई। रूप गोस्वामी का ले जाए तुंडे तांडविनी रतिंग बितनुते मुखे लईते कृष्ण नाम नाचे तुंड अभिराम आरोति बढ़ाए अतिशय। महाप्रभु जी आस्वादन कर रहे हैं एक दो कृष्ण नाम अक्षर, दो दो अक्षर है न जाने इसमें क्या सुधा है क्या अमृत है। तुंडे तांडविनी रतिंग बितनुते जुहा एक दफे कृष्ण नाम करते समय वो नृत्य कर रहे हैं वो जिभा को रोक नहीं सकते हैं। कर्ण क्रोड़ो करम्बिनी कान जब सुनते हैं कृष्ण नाम कोटान कोट कर्ण की अभिलाषा करती है। चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम देखिए जिह्वा में कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं सारा इंद्रिय जो प्रसन्न हो जाती है। हरिदास ठाकुर ने कहने लगे अरे मैंने तो नाम का तो बड़े महत्व मैंने सुना है मैंने प्रचार भी किया है परंतु इस प्रकार नाम महत्व का वर्णन मैं कहीं नहीं सुना है। हरिदास ठाकुर ने कहने लगे तो रामानंद राय जी सब बैठे हैं श्रीमान महाप्रभु जी पूछे रूप तुमने जो नाटक लिखते हैं वो नाटक का नाम क्या है। रूप गोस्वामी कहते हैं एक ललित माधव एक विदग्ध माधव। ललित माधव नाटक जो है वो द्वारका लीला पर है और विदग्ध माधव नाटक जो है वो ब्रजलीला पर है। बोले अच्छा ललित माधव नाटक की कोई बंसी का वर्णन तुमने किया है। हाँ खूब किया है लेकिन बंसी का वर्णन करो। और सभा में सभा देख लीजिए जहां रामानंद राय जी बैठे हैं जहां स्वरूप दामोदर जी बैठे हैं सारा गोष्ठी नीलाचल के जितने गोष्ठी सब बैठे हैं उसके भीतर रूप गोस्वामी कहते हैं बोलते हैं बंसी का वर्णन कर सदवंग सतस्तव जनी सदवंग सतस्तव जनी पुरुषोत्तम पाणु स्थितिर मुरली के सरलाशिजत्या कस्मात्तया सखी गुरोर विषमाग्रीता गोपांगना गण विबोहन मंत्र दीक्षा। कितने रस देख लिया ये रस कभी रूप गोस्वामी के बराबर ऐसा एक भी नहीं मिलेंगे आपको। कैसे वर्णन करते हैं सदवंग सतस्तव जनी अरे मुरली तुम अच्छे वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है परंतु पुरुषोत्तम से पान स्थिति ऐसा तुम्हारा भाग है भगवान गोविंद के करकमलों में तुम विराजमान हो। सत्पंग सतस्तवजनी पुरुषोत्तम से पानो स्थिति मुरली के सरलासी जात्या ये सीधे एक बांस का जो एक टुकड़ा है तुम कस्मात्तया गुरोर विषमा गृहीता। मैंने पूछता हूं कि तुम्हारा गुरु कौन है? ए मुरली, तुम्हारी गुरु कौन है? क्यों बोले गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा, ये दीक्षा तुमसे कहां, तुमको कहां मिला है? गोपियों का मन को मोहित करने के लिए ये दीक्षा तुमको कौन ने दिया है, किसने दिया है, क्या बना है? गोस्वामी जी का श्लोक का झंकार अद्भुत है महाराज। श्रीमद महाप्रभु जी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, देख लीजिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम, बोले मुरली का एक और वर्णन करो। सखी मुरली विशाल छिद्र जाले न पूर्णा लघुरति कठिना तंग निरसा गंति लासी तदपि भजसि सच्चुम्बनानंद संग्रं गोसुचुम्बनानंद संग्रं हरिकर परिरम्भं केन पुण्योदयेन। अरे मुरली, तुमने पूर्व जन्म में जाने क्या तपस्या की है, है? निरंतर गोपियों का जो अधरामृत, श्री कृष्ण के अधरामृत जो है तो निरंतर पान कर रही हो, है? हमारी संपत्ति तुम हमको दिखा दिखा के पान कर रही हो, तुमने किस तपस्या, किस प्रकार तपस्या की है? इस तपस्या के द्वारा श्री भगवान के करकमले विराजमान होकर तुम ऐसा अधरामृत को पान कर रही हो। मुरली बोली, तुम्हें क्या मतलब है इसमें? बोले मैं आपके जन्म में मैं गोपी नहीं बनूंगी, मैं आपके जन्म में तपस्या करके भगवान के हाथ के मुरली बनने की अभिलाषा करके मैं तपस्या करती रहूंगी। ये रूप गोस्वामी जी का दुष्चार बात, परंतु रूप गोस्वामी जी का जो चरित्र है महाराज, ये तो सारा जीवन अगर वर्णन किया जाए वो समाप्त नहीं हो सकते। हमारी पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है, मैं तो कुछ आपके लिए थोड़ा सा रूप गोस्वामी जी का इशारा कर दिया है। हमारे परम सौभाग्य है कि महाराज जी हमको इस स्थान पर बैठा है, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, अब यहाँ आपके चरणों में वंशा कल्पतरुभ्यस्त कृपा पावने भो वैष्णव।
उस रस में भक्तों के प्रति मैं अपराधी नहीं बनना चाहता, किंतु समय की भी सीमा है, समय भी रुकता नहीं है, समय की भी गति है। अब मैं अपने मंच पर आसीन श्री राधारमण मंदिर के गोस्वामी, पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक, श्रीमद् भागवत के विद्वान ओजस्वी वक्ता श्री अनिल कुमार गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वह उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन करें।
वंदनीय संत वृंद, अर्चनीय भक्तगण, समय की सीमाओं को पूर्णतः उसके प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए 5-7 मिनट में आप लोगों के श्री चरणों में, क्योंकि इसे मैं महज संयोग समझूं या श्री राधा गोविंद की अनुकंपा या गुरु के चरणों का प्रसाद का फल के रूप गोस्वामी पाद के इस स्मृति महोत्सव में शब्दों के माध्यम से कुछ कहने और सुनने का सुयोग सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। वृंदावन धाम स्थित गौड़िया मठ के प्रांगण में, संतों के समुदाय में और भक्तों के बीच में जब भी कोई सत्संग, चाहे उसका लक्ष्य कुछ भी क्यों नहीं हो, विषय उसका कैसा भी हो, लेकिन जीव को एक चीज परंपरा से प्रसाद के रूप में दे देता है कि जीव को एक ऐसे आनंद के सागर पर ले जा करके बिठा देता है जहां से लौट कर आना जीव की कभी कोई इच्छा नहीं होती। जैसे जीव के मन में जब कभी भी वृंदावन की कोई स्मृति आती है तो उसके हृदय पटल पर राधा माधव की कोई छवि अंकित हो जाती है, और जीव इस बात की अनुभूति करने लगता है कि वह वृंदावन धाम पहुंच गया है। इसी प्रकार से महाप्रभु प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य की अंतरंग लीला के पार्षद उनके अप्रतिम कृपा पात्र श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों के स्मरण करने का जब जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसके अंतःकरण में प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य की अनगत लीलाएं आकर के उसके हृदय पटल पर अंकित हो जाती है। और एक जीव भक्ति के उस सागर में जाकर के डूब जाता है जिस सागर से निकलना उसके लिए अभीष्ट नहीं होता, उसके जीवन का ध्येय भी नहीं होता है। डूबते तो हम हैं, बोले कहां डूबते हैं, बोले संसार के सागर में डूबते हैं, बोले भक्ति के सागर में डूबना चाहते हो तो रूप गोस्वामी पाद के चरणों का स्मरण करना सीख लो। और जिस संसार सागर में हम रात दिन डूबते हैं, जिस संसार से हमारा संबंध इतना मजबूत बन गया है, इतना प्रगाढ़ है कि आज लाख प्रयास करने पर, लाख चेष्टाएं करने पर, नाना प्रकार के परिश्रम और व्यतिक्रम करने पर भी हम उन संबंधों में शिथिलता नहीं ला पाते हैं, उन संबंधों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई जीव किसी प्रकार से भगवत नाम का आश्रय ले लेता है, महाराज कैसी अद्भुत विडंबना है कि जिस संसार से हमारा संबंध इतना मजबूत है, इतना प्रगाढ़ बन गया है, कभी एक क्षण को एकांत में बैठ करके जीव को चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए इस बात का कि जिस संसार से हमारे संबंध इतने मजबूत है, क्या उस संसार के निर्माणकर्ता प्रभु से अभी तक हम अपने जीवन का कोई संबंध स्थापित कर पाए। और संबंध स्थापित अगर करना चाहते हो, महाराज मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने नाना प्रकार के पंथ दिए हैं, नाना प्रकार के मार्गों का निर्देश किया है, लेकिन प्रेमावतार महाप्रभु और उनके षड गोस्वामी पार्षदों ने, रूप गोस्वामी पाद के व्यक्तित्व और कृतित्व की अनेक विद्वानों ने, मनीषियों ने मंच के माध्यम से महाराज चर्चा की, मुझको तो उतना ज्ञान भी नहीं है, इस क्षेत्र में अभी किसी प्रकार का कोई दखल भी नहीं है, मैं तो एक ही बात समझ पाया हूँ, आज के जितना भी स्वाध्याय गुरु के चरणों के आश्रम में बैठ करके करने को प्राप्त हुआ है। बोले दो चीज कर लो महाराज, बोले सत्संग कर लो और संकीर्तन का आश्रय ले। बोले सत्संग से क्या मिलता है, बोले ये विचार का विषय नहीं है, बोले सत्संग से जीव के अंदर एक इस प्रकार की पात्रता प्रदान हो जाती है कि जीव के अंदर हरेक के प्रति सद्भाव जागृत हो जाता है। और जब जीव के अंदर सद्भाव जागृत हो जाएगा, जीव को हर जगह महाराज गोविंद का दर्शन होने लगेगा, जीव को हर जगह राधा रानी के स्वरूप का दर्शन होने लगेगा। महाराज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर जागतिक दृष्टि से जब इसकी विवेचना करते हैं तो एक ही बात कह सकते हैं कि संत बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, बोले वृद्ध बैठे हैं, बाल बैठे हैं, माँ बैठी है, बहने बैठी है, लेकिन अगर किसी संत की दृष्टि से देख लोगे, अगर किसी संत से पूछ लोगे तो संत एक ही उत्तर देगा, बोले मैं नहीं जानता कौन बैठा है, बोले मेरी नजर में तो सारी की सारी किशोरी रूप बैठी हुई है। महाराज उसको हरेक में गोविंद का दर्शन होगा। बोले जब सत्संग से जुड़ जाओगे तो फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हर जगह तुमको गोविंद के रूप और स्वरूप का दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। महाराज रूप गोस्वामी पाद जिनके नाम की स्मृति से महाराज कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं, कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना कि गंगा के घाट पर हरिद्वार जाना है तो हर की पहड़ी पर डुबकी जरूर लगा लेना, बोले इसी आध्यात्मिक जगत के ये कुछ ऐसे पड़ाव और केंद्र बिंदु हैं, ऐसे आस्थाओं के केंद्र हैं महाराज जिनके नाम की स्मृति आने से सारी की सारी ब्रज लीलाएं, सारी की सारी महाप्रभु की आंतरिक लीलाएं अपने हृदय पटल पर चलचित्र की भांति जीवंत दर्शन करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त हो जाता है। और भगवत नाम के आश्रय में सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जब जीव शुद्ध मन से भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, जीव हृदया नामे रुचि वैष्णव सेवा, महाराज भगवत नाम के प्रति जब जीव की निष्ठा बन जाती है। बोले नाम क्या करता है, बोले नाम क्या करता है, बोले इस विचार में मत पड़ो, तुम तो ये देखो कि नाम क्या नहीं कर सकता है। बोले हम ठाकुर का दर्शन करने जाते हैं, बोले हम भगवत कथा सुनने जाते हैं, चाहे वो राघवेंद्र की कथा हो या भगवान श्याम सुंदर की कथा हो या प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य की कथा हो। बोले एक भाव लेकर के चले जाना मेरे भाइयों भक्तों, बोले एक भाव लेना। बोले तुम कथा को कितना समझ पाते हो, सत्संग को तुमने कितना समझा है? बोले ये विशेष बात नहीं है, सत्संग से अपने आप को जोड़े रखना, एक न एक दिन राधा गोविंद की कृपा से ऐसा आ जाएगा कि सत्संग तुमको समझ लेगा। महाराज इस नाम के आश्रय में एक ही चीज जीव के पास होती है, बोले जब तक नाम का स्मरण करने का जीव को अभ्यास नहीं होता है, जब तक शुद्धि की बात नहीं होती। महाराज दुनिया के जितने साधन हैं, समय की अवधि को देखते हुए उसका विस्तार से वर्णन नहीं करते, लेकिन एक बात कहने का साहस करते हैं, बोले सारे साधन इस पारमार्थिक जगत में सिद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध जीव को कर सकता है। शुद्धता की पात्रता अगर कोई प्रदान कर सकता है तो भगवत नाम का आश्रय दे सकता है। कृष्ण नाम जीव को वो शुद्धता प्रदान कर सकता है। महाराज शुद्धता कह देने में कि जीव शुद्ध हो कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मन शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो, चेतना शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो, संकल्प शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, बोले महाराज इतनी चीजें कैसे शुद्ध हो सकती हैं? बोले भगवत नाम के आश्रय से शुद्ध हो सकती हैं। बोले रूप गोस्वामी पाद के श्री चरणों में अगर प्रणाम करना चाहते हो तो दो ही तरीका है कि सत्संग का श्रवण करो और संकीर्तन का आस्वादन करो। श्रवण कोई साधारण क्रिया नहीं है, अगर श्रवण मात्र श्रवण है तो उसका परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। श्रवण स्मरण शरण श्रवण मनन आस्वादन और कतिपय निर्दिष्ट आचरण से जीव के अंदर एक अपूर्व प्रकार के रस का संचार होता है और नस में गोरस का प्रभाव होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इस भक्ति से मुक्त होना किसी ज्ञान का लक्ष्य नहीं हो सकता, किसी अज्ञान का पक्ष नहीं हो सकता। मुक्त होना चाहते हो तो प्रकृति से हो और आसक्ति चाहते हो तो श्री राधा गोविंद के चरणों में। इन्हीं सी शब्दों के साथ भगवान श्री राधा गोविंद के इस प्रांगण में बैठ करके श्री रूप गोस्वामी पाद के श्री चरणों में आप सभी संत वृंद आचार्यों और भक्त जनों के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री गोविंद भगवान की।
भगवत कृपा प्राप्ति के लिए सत्संग एवं हरिनाम संकीर्तन का माध्यम बताया गया। अब समय की अधिकता हो रही है, वक्ता अनेक हैं, इसलिए विद्वान वक्ताओं के श्रीचरणों में समय की निवेदन करते हुए मैं चाहूँगा कि वह समय की गति का जरा ध्यान रखें। अब मैं अपने मत जिनका कि जीवन का अधिकांश समय वृंदावन एवं नंदगांव एवं ब्रज के अन्य स्थानों में श्री भगवत भजन एवं श्री भगवत दर्शन में व्यतीत हुआ, ऐसे अपने मत विद्वान मनीषी श्री भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज से निवेदन करूंगा कि वह उपस्थित भक्तजनों का मार्गदर्शन करें।
प्रियस्वरूपीं दयितस्वरूपीं प्रेमस्वरूपीं सहजाभिरूपीं निजानुरूपे प्रभुरे कुरूपीं ततानुरूपीं सविलासरूपे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित सभापति महोदय, त्रिदंड स्वामी पूज्यपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और अन्यान्य भक्तिबिंद चरणी हमार प्रणति पुष्पांजलि जानाई, उपस्थित अन्यान्य भक्तबृंद मातृबृंद श्रोतृमंडली सकल निकट हमें यथाज्ञ प्रणामादि निवेदन करी। श्रील त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराजर कृपादासी श्री रूप गोस्वामी पदे श्री चरित आलोचना करार सौभाग्य किस लाभ करी बटे, क्यों हमें क्षुद्र क्षुद्रे पथे ক্ষুদ্রীর পক্ষে বৃহতি চরিত্র কীর্তন সম্ভব নয়, তবে তৎ কথা কীর্তনমেব হি কৃপাকারণ, মহতি চরিত্র কীর্তনই তার কৃপা প্রাপ্তির কারণ। একথা শ্রীমৎ ভাগবতে দশম স্কন্ধে রাস পঞ্চাধ্যে শ্রীমতী বৃষভানন্দিনী কৃপা করে জানিয়েছেন, তাই আমরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহতি চরিত্র কীর্তনে ব্রতী হচ্ছি। আজ শ্রী শ্রী রূপগোস্বামীপাদের ত্রিভাবতিথি পূজা বাসর, এত উপলক্ষে সজ্জনবৃন্দ ভক্তমণ্ডলী একত্রিত হয়েছেন তারই পুতচরিত্র কথা আলোচনার জন্য, তার পুতচরিত্র কথা শ্রবণ কীর্তনের জন্য। শ্রী রূপ গোস্বামীপাদকে প্রথমে সেটি আমাদের জানবার বিষয়, তিনি শ্রী চৈতন্যের কৃপা সর্বেশ্বের মূর্তি, তিনি অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের অশেষ কৃপাভাজন মূর্তি, আবার শ্রী চৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ প্রধান শ্রী সর্বদামোদর ও রামানন্দ রায়ের জীবন প্রাণস্বরূপ, তাদেরও অশেষ কৃপাভাজন স্নেহভাজন তথা যত গৌড়ীয় ভক্ত প্রধান মহন্ত আচার্য তাদের সকলের কৃপাভাজন শ্রী রূপ গোস্বামী। তিনি যে বিশেষ করে চৈতন্যের কৃপাভাজন তার প্রমাণ তার লেখনী। শ্রী চৈতন্যের মনোভীষ্ট জগতে প্রসার করবার জন্য একমাত্র ব্রতি, একমাত্র কৃতি, একমাত্র কৃতার্থ বক্তা চরিত শ্রী রূপ গোস্বামী প্রভু। তিনি চৈতন্যের মনোভীষ্টকে স্থাপন করেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে, তার আচারের মাধ্যমে, তার প্রচারের মাধ্যমে। যেমন বিষ্ণুপাদ পদ থেকে গঙ্গার উদয় হলেও